कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी के कार्यक्रमों के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के भी आप मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप 1962 में ज्ञान में आए जब साकार मम्मा बाबा थे, तो बाबा की पालना लेने का परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। और उसमें भी विशेष बात कि 18 जनवरी को जब बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, उस समय उस दृश्य के आप साक्षी बने। उस समय आप मधुबन में ही थे ड्रामानुसार, और ये विशेष भाग्य आपको प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में भी आप अपना थोड़ा अनुभव सुनाएंगे। आपने अनेक कैंपेन किए हैं, उसमें पर्यावरण जागृति अभियान मुख्य है, उसके कारण आपको अवार्ड भी मिला है, कई चित्र प्रदर्शनियां बनाई हैं आपने, कुछ बुक्स भी लिखे हैं, विदेशों में भी कई देशों में जाकर के आपने अपने अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। बहुत ही सरल स्वभावी नम्रचित मृदुभाषी हैं, और अभी हम सुनेंगे, विषय है सर्व शक्तियों का आधार।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिल करके उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसे यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और सभी वत्स मिल करके किया करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरा गहरा श्वास अंदर लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति का महामंत्र ही वास्तव में सर्व शक्तियों का आधार है, जैसा कि आज का विषय है। क्योंकि जब हम पहले दिन इस संस्था में आते हैं, बाबा के घर आते हैं, तो भी हमें ये महामंत्र दिया जाता है, ओम शांति। अर्थात क्या? मैं आत्मा हूँ। उस दिन तो सिर्फ ये जैसे पढ़ना और सुनना ही होता है, लेकिन इस महामंत्र में स्थित होते 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 हमारा ये संगम योगी जीवन जो है ये लगभग पूरा ही निकल जाता है, और अंत समय तक हम इस महामंत्र में स्थित होने का अभ्यास करते रहते हैं, और सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही, तो इसीलिए अंत में हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस संबंध में अभी कुछ दिन पहले भी बाबा की एक मुरली चली थी, आप सबने सुना होगा, उस दिन पहले अव्यक्त मुरली, तो उसमें बाबा ने क्या बताया था, सर्वशक्तियों का आधार क्या है। तभी पिछले संडे को ही चली थी एकाग्रता। बहुत अच्छा, बाबा ने यही बताया कि एकाग्रता जैसे सर्व शक्तियों का आधार है, अनेकानेक शक्तियां, और उसमें भी एकाग्रता की परिभाषा बाबा ने बहुत बहुत सिंपल दी। क्या एकाग्रता की परिभाषा दी थी? बहुत सिंपल, एक ही समय पर एक संकल्प में स्थित रहना ही एकाग्रता है। एक समय पर एक संकल्प में स्थित होना एकाग्रता है। हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं और आप सबने भी सुना होगा, बहुत बहुत संकल्प मन में पैदा होते हैं, बहुत विचार मन के अंदर आते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, कितने विचार मन में आते हैं, सुना है ना? और बाबा तो कहता है एक समय पर बस एक ही विचार आए और आज के सारे डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट और सब लोग बताते हैं एक समय पर, यानी कि लगभग एक मिनट में हमें कितने विचार आ जाते हैं, लगभग 25-30 विचार आ जाते हैं एक मिनट में, यानी कि हर 2 सेकंड में हमें एक विचार आ जाता है। 2 सेकंड पूरा हुआ, दूसरा विचार आ गया, और 2-3 सेकंड हुए, हर 1-2 सेकंड में विचार आते रहते हैं। तो ये तो मन का कार्य है, और बाबा कहते हैं कि हमारा ऐसा अभ्यास हो जो एक समय पर एक ही विचार रहे, और वो विचार अगर एक समय पर होता है तो क्या होता है, वो विचार इतना शक्तिशाली होता है कि जो भी हम विचार करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। न हो सिद्ध ये हो ही नहीं सकता, ये भगवान के महावाक्य। बस कंडीशन यही है कि वो विचार एक समय पर लगातार बना रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हम सबका ये अनुभव है, योग भी करते हैं, बस बहुत शुद्ध संकल्पों में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वमान के अंदर स्थित होने का, शक्तिशाली आत्मा हो, किसकी संतान हूँ मैं आत्मा, जो जो बाबा ने अच्छे ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं उन सब में स्थित होने का, लेकिन एट ए टाइम एक संकल्प में जब स्थित होना चाहते हैं, बस कुछ ही सेकंड के अंदर वो विचार अपने आप बदल जाता है। मन का काम ही है सोचना। तो ऐसा क्या करें कि जो बाबा ने कहा है कि एक ही समय पर एक ही संकल्प में जितना समय चाहे हम स्थित हो सके, और उसके आधार पर ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। जो हम कहते हैं ना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो सफलता इस आधार पर ही है कि कितने समय तक हम एक संकल्प में टिक सकते हैं, और वो ही शो करता है, प्रदर्शित करता है कि हमारा मन के ऊपर कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है। तो हम मन वचन कर्म ये तो जानते ही हैं, आत्मा की फैकल्टी है, आत्मा के अंग हैं, और मन वचन कर्म मन बुद्धि संस्कार ये क्या क्या करते हैं ये भी हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मन से भी सूक्ष्म जो शक्ति है वो कौन सी है, उसे हम वृत्ति कहते हैं। मन का भी आधार हमारी वृत्ति के ऊपर निर्भर है, इसीलिए जीवन को क्या कहा जाता है, जीवन जो है आध्यात्मिक भाषा में वैसे तो कहते हैं जीवन एक खुली किताब है, इसका पहला पन्ना और आखिरी पन्ना गायब है, बाकी सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। तो पहला पन्ना कौन सा और आखिरी पन्ना कौन सा? पहला पन्ना हम कहां से आए हैं, आत्मा वो पहला पन्ना है, और आखिरी पन्ना कहां जाना है वो दोनों नहीं है, बाकी बीच के सारे पन्ने हैं, क्योंकि वो इस संसार की ही सारी गाथा है। जीवन को ये भी कहा जाता है इट इज ए जर्नी फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब, यानी कि गर्भ से लेकर और कब्रिस्तान तक की यात्रा का नाम जीवन है। तो ये सब जीवन की परिभाषाएं तो बहुत अनेक अनेक लोगों ने दी हैं, लेकिन आध्यात्मिक रीति से जीवन की जो परिभाषा एक बहुत अच्छी है और यथार्थ वो है, उसे कहते हैं वृत्ति से कृति तक की यात्रा का नाम जीवन है। वृत्ति यानी सबकॉन्शियस माइंड, वृत्ति से कृति यानी जो हम कर्म करते हैं उसका नाम जीवन है, वृत्ति से कृति तक की यात्रा। इसीलिए आज एक तो हम ये देखेंगे कि जो हम इस यात्रा में कितने एकाग्र हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, उसी को बाबा ने सर्व शक्तियों का आधार कहा है। जितनी भी शक्तियां हैं सबका आधार। तो संकल्प शक्ति जो है, जो पूरा का पूरा हमारे जीवन का आधार है, मन जो कहा है ना, इसीलिए आध्यात्मिकता में हमारे शास्त्रों में मन को बहुत बड़ा कह दिया, मन मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत माया जीते जगत जीत। गीता में भी क्या कह दिया है, मन मना भाव। तो ये मन को तो समझने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन मन से भी और सूक्ष्म वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड, वो उस पर अनेकानेक जन्मों की छाप पड़ी हुई है और उसके आधार पर ही हमारे जन्म पुनर्जन्म होते रहते हैं, और उसके आधार पर ही सारे संस्कार आत्मा लेकर आती है और आत्मा अपने संस्कार बनाती है। तो इन संकल्पों को हम कैसे एकाग्र करें? खाली वैज्ञानिक लोग ये कह के चले गए हैं कि इतने संकल्प करता है व्यक्ति, लेकिन उन पर कंट्रोल कैसे हो उसका भी उन्होंने काफी विश्लेषण किया है। दुनिया के जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी होके गए हैं, और बाबा ने भी जिसका नींव बता दिए, आधार बता दिया है। तो संकल्प को हम इसका मन को एकाग्र करने के लिए तीन बातों पर हम अपना अटेंशन पहले दें। नंबर वन, पहला है विचारों की संख्या, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स यानी विचारों की गुणवत्ता। एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट विचारों की संख्या, दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट विचारों की गुणवत्ता, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स विचारों की दिशा। ये तीन बातों को हम जितना जानते जाएंगे तो मन को हम एकाग्र कर सकेंगे। अब कैसे करें इन्हें, उसका भी बाबा ने तो बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण समय प्रति समय किया है। तो जैसे क्वांटिटी ऑफ थॉट विचारों की संख्या की बात है, और ये आपको बताया कि ऑन एन एवरेज दो सेकंड में एक विचार आता है। अब ये विचारों की संख्या हम सबको अनुभव है, जीवन में इतना समय से हम चलते हैं और विचार जब लगभग इतने होते हैं कि एक मिनट में लगभग 30 विचार, तो सारे दिन भर में ना 25-30 हजार विचार आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मन हैंडल कर सकता है। मानो मेरी क्षमता 10 किलो वजन उठाने की है और मुझे 2 किलो 3 किलो वजन 5 किलो दे दिया जाए तो मैं सहज उठा सकता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा क्षमता उठाने की है। लेकिन अगर मुझे 50 किलो दे दिया जाएगा जो उठाने की क्षमता नहीं है तो क्या होगा? नहीं उठा सकेंगे उसे, और फिर कहीं भी शरीर में दर्द हो जाएगा, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही नॉर्मल केस में अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं शांति में, तो विचारों की संख्या बड़ी नॉर्मल वे में चल रही है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मानो आप बैठे और सडनली कोई फोन आ गया, मोबाइल आ गया, या कोई मैसेज आ गया आपके पास कि आपके जो फलाना नियर एंड डियर है, संबंधी है, मित्र हैं, बहुत आपके क्लोज हैं, आप उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उसका सडनली कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, बहुत क्रिटिकल स्टेज है, तो बस आप यहीं बैठे हो, समाचार सुना और बस मन में विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। जो अभी लगभग 25-30 हजार विचार थे वो बढ़ के 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार हो जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, उसका तो अभी परिवार छोटा है, बहुत गंभीर स्थिति है, आदि आदि। जैसा आपके संबंध स्थिति है वैसे विचार बहुत दौड़ने, तो ये क्वांटिटी ऑफ थॉट सडनली बढ़ गई, इस पर आपका नियंत्रण नहीं हुआ। तो ये पहली चीज है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या। फिर दूसरी बात आती, इसको कम कैसे करें, कैसे इसको नॉर्मल लाएं। इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट प्ले करता है, जो दूसरी बात बताई कौन सी, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो एक तो यह है कि जब विचारों की संख्या बहुत बढ़ गई, डॉक्टर लोग तो दे देते हैं कि भाई इससे स्ट्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सडनली नींद नहीं आएगी, बहुत टेंशन हो जाएगा। ये सारे मन के विचारों का असर शरीर की सब प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, कोई एसिडिटी हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, वगैरह वगैरह, बहुत क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी। एक तो यह है कोई गोली खाओ, दवाई, डॉक्टर आपको सुला दे कुछ हो, फिर भी मन चलता रहता है। लेकिन दूसरा जो बाबा ने इसकी नोबल विधि बताई है वो है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स की क्वालिटी ऑफ थॉट। जितनी क्वांटिटी ऑफ थॉट ज्यादा होगी उतना क्वालिटी ऑफ थॉट कम होगी। और अगर हम क्वांटिटी ऑफ थॉट को ज्यादा से कम करना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। वह उसी का नाम मेडिटेशन है, उसी को हम योग बोल देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी जो वो दे के संबंध, उसकी स्मृति थी और जिसके कारण विचारों की संख्या बहुत बढ़ गई, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सारे शारीरिक प्रक्रियाओं पर उसका असर हुआ, तो हमें उसको नॉर्मल करने के लिए क्वालिटी ऑफ थॉट को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि विज्ञान की भाषा में कहते हैं एजुकेशन की कि क्वालिटी ऑफ थॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वांटिटी ऑफ थॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ थॉट। तो क्वालिटी ऑफ थॉट अगर बढ़ाएंगे, विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, क्वालिटी को, तो क्वांटिटी अपने आप कम होगी। और वो बढ़ाने की विधि बाबा ने बताई है अपने को, ये बस धीरे वो परिस्थिति से थोड़ा सा अपने को हम डिटैच करें और उसमें हम यही लाएं कि भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस आत्मा को भी जैसे हम इमर्ज करें, जो उसके संबंध है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सकाश दें, शक्ति दें। क्योंकि परसों नरसों जो पिछले संडे की मुरली में था उसमें बाबा ने स्पष्ट बोला है आपकी ये एकाग्रता की शक्ति से आप किसी भी आत्मा को अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, अपना सहयोग दे सकते हो। याद होगा ना आपने सोमवार रविवार की मुरली में ही बाबा ने ये बोला है, उस आत्मा तक आप पहुंच सकते हो और उसको अपना सहयोग दे सकते हो। क्या सहयोग चाहिए ऐसे समय में उसको? उस आत्मा के जो निकट संबंधी वगैरह और है जो बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो उनको आप यहीं से सकाश दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो। और वो तब होगा जब हम पहले खुद एकाग्र होंगे। और ये बात तीसरे उसमें आती है, क्वांटिटी ऑफ थॉट, क्वालिटी ऑफ थॉट, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ थॉट, विचारों की दिशा क्या है। विचारों की दशा तो हमने इसमें समझ ली, क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी में दशा जो है शक्तिशाली से होकर निर्बल हो गई, कमजोर हो गई, चारों तरफ व्यथित हो गई। लेकिन दिशा, डायरेक्शन ऑफ थॉट, उसको द्वारा हम इसको पुनः बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। वो बचपन में आप सबने ना वो सूरज वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, सूर्य की किरणें आती है, उसके सामने अगर एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो क्या होता है, सारी किरणें एक जगह एकाग्र हो जाएंगी और फिर वो जो भी नीचे होगा उसे एकदम जला देंगी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करा, किरणों को एकाग्र कर दिया, बस उससे वो ही सूरज है, वो ही दिन है, सब कुछ वो है, सिर्फ उसे एकाग्र करके इतनी ज्यादा शक्ति पैदा कर दी कि नीचे जल गई, वो परिस्थिति खत्म हो गई। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो बाबा ने कहा, एकाग्रता के द्वारा इतने हमारे अंदर जो अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, उन सब संकल्पों को हमने केवल एक दिशा में एकाग्र कर दिया, तो उससे हम जो लाना चाहते हैं रिजल्ट, हम क्या चाहते हैं कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकले, हमारा मन एकाग्र हो, उस आत्मा तक सकाश पहुंचे, हमारा सहयोग पहुंचे, हमारा मैसेज पहुंचे, और वो आत्मा को भी शक्ति मिले और परिस्थिति भी हमारी अनुकूल हो जाए। जो परिस्थिति प्रतिकूल हो गई उसको हम अनुकूल कर लें, राइट डॉक्टर मिल जाए, राइट मेडिसिन मिल जाए, राइट सब चीज मिल जाए, और वो व्यक्ति उस परिस्थिति से मानो बाहर आ जाए। यही तो हम चाहते हैं, केवल चिंता करने से नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, बल्कि उसको हम एक दिशा प्रदान कर दें। ये हम बच्चों के हाथ में, पचासों बार यज्ञ में हम लोगों ने ये सब एक्सपेरिमेंट किए हैं, कोई भी परिस्थिति को कई हद तक बदला है, ये हमारे हाथ में। हम लोग साधारण नहीं, हम अपने को साधारण रूप में देखते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के एम्बेसडर्स हैं। जैसे एम्बेसडर हो, कोई पावर गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर, उनके पास पावर होती है ना, तो वो पावर तो दिखती है भाई, ये फाइनेंशियल पावर है, ये पॉलिटिकल पावर है, ये हमारे पास बहुत सूक्ष्म शक्तियों की पावर है, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते समय पर। बाबा ने कहा है बच्चे मुझे यूज करना नहीं जानते, यूज नहीं करते। मैं तो बच्चों के सामने हाजिर हूं, लेकिन बच्चे यूज ही नहीं करते। वही हालत है द्रौपदी वाली, हा? सुनी है ना सबने, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसने सबको याद किया, अर्जुन को, भीष्म को, सबको, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका, क्योंकि सब जुए में हारने के कारण बस उसके वशीभूत थे उस परिस्थिति को नहीं। लेकिन जब उसने कृष्ण जी को याद किया, जैसा कहानी में आता है, तो भाई रक्षा करी भगवान ने चीरहरण से। तो जब द्रौपदी ने पूछा कि भगवान आपने आने में बहुत देरी करी, तो क्या उत्तर था कि हे द्रौपदी तुम याद करो, पहले तुमने किसको याद किया? जब तुमने उसको याद किया वो नहीं आया, दूसरे को, गुरु को और भीष्म पितामह, सबको याद किया, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सके, और अंत में तुमने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। वही स्थिति हमारी है, जब कोई भी ऐसी होगी तो हम फटाफट डॉक्टर को, इधर संबंधी को फोन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या स्थिति है आदि आदि, वो भी करे, वो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ एक बल, एक भरोसा। बाबा को जब हम पुकारते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा हमें राइट टचिंग एट राइट टाइम देता है। बाबा सही टचिंग देगा, ये बच्चे ये करो, और हमारा भी एंटेना अगर ये बुद्धि खुली होगी तो हम सही समय पर सही टचिंग करके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए एक आवश्यक ये है, इन तीन बातों को हम चेक करते चले, और जितना ये तीन बातें चेक होती जाएंगी राइट डायरेक्शन में, तो बस एकांत पहले बैठे, परिस्थिति विपरीत है तो स्वाभाविक है हम बैठेंगे भी, हमारा मन नहीं लगेगा, मन बार बार भाग जाएगा, उसी परिस्थिति में भाग जाएगा, तो क्या करें फिर, भागेगा, मन का काम है भागना, हमारा काम है उसे फिर से ला करके बाबा में स्थित करना। और उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाबा की टचिंग हो रही है या मेरे अंदर के विचार है, तो मन की एकाग्रता पर ये पूरा का पूरा निर्भर है। इसीलिए आवश्यकता ये है कि ऐसी जब परिस्थितियां हो, ये परिस्थितियां कुछ दिन तक चलती है, कुछ समय तक चलती हैं, तो इसीलिए इसका पहले से ही अभ्यास होना बहुत जरूरी है। जब प्यास लगे उस वक्त कोई कुआं खोदने थोड़ी जाएगा, उस समय जाएगा कुआं खोदने तो क्या होगा, उस समय तो सब काम पहले से होना चाहिए, बस प्यास लगी, पानी लिया, प्यास बुझाएगा। ऐसी ये शक्तियों के अगर हमने स्टॉक जमा किया हुआ होगा तो समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस शक्ति को हम विड्रॉ कर सकेंगे और वो शक्ति हमारे काम आएगी। और इसीलिए बाबा ने कहा है वर्तमान समय दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। कौन सी? एक तो निर्णय करने की शक्ति, परखने या निर्णय कर, शक्तियां बहुत हैं, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण जब माया के भी सूक्ष्म रूप हैं, प्रकृति के पांच तत्व भी अपना भयंकर रूप दिखाएंगे, चारों तरफ सब संबंध और माया के भी बहुत सूक्ष्म रूप आएंगे, तो ऐसे समय क्या होना चाहिए? एक तो परखने या निर्णय करने की शक्ति बिल्कुल राइट हो, और उसके लिए ही बाबा ने क्या कहा है, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? एकाग्रता की शक्ति की। हम कहते तो हैं परखने या निर्णय करने की शक्ति, लेकिन अगर एकाग्रता की शक्ति की कमी होगी तो ये परखने, परिस्थिति को परखना या निर्णय करना वो हम नहीं कर पाएंगे यथार्थ। और दूसरी शक्ति की आवश्यकता है सामना करने की शक्ति। परखना भी आवश्यक है, परख भी लिया, लेकिन अगर सामना करने की ताकत नहीं है तो क्या फायदा हुआ? और सामना करने की शक्ति के लिए कौन सी बात की आवश्यकता है? बाबा का सदा हाथ और साथ, ये आवश्यक है, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि इस मुरली में भी बाबा ने बताया था, यही एकाग्रता की मुरली में, कि ऐसी अब इमरजेंसी परिस्थितियां आने वाली हैं, बहुत इमरजेंसी परिस्थितियां आएंगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इमरजेंसी के लिए तैयार होना पड़ता है ना। लौकिक में हर एक कोई अनुभवी है, घर में मान लो कोई शादी हुई, अब सबको मालूम है शादी में क्या क्या परिस्थिति होगी, ये सामान खरीदना, वो खरीदना, हर जगह पैसे, तो पैसे का पहले से प्रबंध किया हुआ होता है, भाई एक दो से काम नहीं होगा, 10-20 संबंधियों को बुलाया होता है, काम बांट देते हैं, इस तरीके से सारी जैसी आने वाली परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने को हम सेट कर लेते हैं। ऐसे अभी इमरजेंसी परिस्थितियां आएंगी तो मानो किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी आई, तबीयत बहुत खराब हो गई, बाबा ने इसमें भी बताया था, मुरली में भी। हाँ, क्या करते हैं उसको जब ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहले उसको एक तो ऑक्सीजन लगाते हैं और दूसरा उसे वो ड्रिप चढ़ाते हैं। ये दो चीज कंटिन्यूअसली जरूरी होती है। ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी? जो बाबा कहता है हिम्मत का श्वास। अपने में भी हिम्मत हो, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे प्रकृति की परिस्थिति आए, चाहे संबंध की आए, कोई भी आए, हम हिम्मत का श्वास न छोड़े। ये श्वास है, एक बार श्वास टूट गया फिर तो खेल खत्म। तो इस श्वास को टूटने न दे, हिम्मत का श्वास, ये एक तो बहुत आवश्यक है। अपनी भी हिम्मत और दूसरी आत्माओं की भी हिम्मत। कुछ तो संपर्क में होती हैं, जो संपर्क में नहीं है उन्हें यहीं से ही हिम्मत का सकाश दे। तो एक तो ये हिम्मत का श्वास, और दूसरी क्या चीज है? जब जाते हैं ये श्वास, ऑक्सीजन हो गई, ये तो ये भी आवश्यक है ऑक्सीजन। और दूसरा ड्रिप की मानो ब्लड बहुत बह गया है या कोई भी चीज है, वो ड्रिप से सब चीज बैलेंस होती रहती है। ग्लूकोज हो या कोई जो शक्ति की चीज हो, वो कंटिन्यूअस आती रहे, उसमें कंटिन्यूटी आवश्यक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो बाबा ने बताया है ना, कौन सी कंटिन्यूटी की आवश्यकता, और इसीलिए बाबा ने ये कहा है कि कोई भी याद जो है, ट्रैफिक कंट्रोल भी बाबा ने इसीलिए दिया है, अमृत वेला भी इसीलिए दिया है। पहले ट्रैफिक कंट्रोल 4-5 टाइम होता था दिन में, अभी हर घंटे के लिए बाबा ने 2 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, जिससे कि ट्रैफिक, जो मन में ट्रैफिक चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं ना, उसको हम रोक करके एक नई दिशा प्रदान कर सके। तो इसीलिए ड्रिप से क्या होता है, एक बार भी है, जैसे वो कंटिन्यूटी अगर बिगड़ गई ना तो मुश्किल होता है। जैसे किचन में गैस होती है, गैस अगर एक बार रुक गई फिर से उसे जलाना पड़ता है। बंद कर दी, बंद हो गई, फिर खोल दी, गैस तो आ जाएगी लेकिन स्पार्क अगर नहीं दिया वो जलेगी नहीं। इसी को ही बाबा ने क्या कहा है, वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी फटता है ना, लगातार निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। ऐसे ही हमारा योग, याद जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार निरंतरता अगर बनी रहेगी तो क्या होगा, वो निरंतरता ही शक्ति का एक स्रोत है, एकाग्रता का स्रोत है। इसीलिए बाबा ने कहा एक सेकंड भी, जो उदाहरण भी दिया ना बाबा ने, कौन सा, बूंद बूंद भरे तालाब। तो बस एक एक बूंद से जैसे तालाब, ये यज्ञ का नियम रहा है शुरू से लेकर। तो अभी भी बस एक एक सेकंड की याद हो, 2 मिनट, जब भी जितना टाइम मिले, ये न सोचे अभी भट्टी है, आधा घंटा एक घंटा योग में बैठे हैं, वो तो अच्छा है, बीच बीच में मिलता है, लेकिन जो भी फ्रेगमेंटेड टाइम मिलता है उसी को ही टाइम मैनेजमेंट में फ्रेगमेंटेड टाइम बोलते हैं। तो उसके द्वारा हम उस समय को सफल, इसीलिए बाबा ने कहा है अगर हम ये सफलता चाहते हैं तो निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज अपनी अमृत वेले उठ करके दिनचर्या बनाए। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के अब 5-6 स्रोत हैं। एक है अपनी जो है वो तन और मन की दिनचर्या। तन की दिनचर्या तो बनाते हैं, अब आज आया बहन जी ने भी आपको बताया होगा, इतने बजे तक क्लास है, ये आराम है, फिर बाबा के कमरे में जाके लेटर लिखना है, तन की दिनचर्या तो बता दी। अब मन की दिनचर्या, जो संकल्पों की दिनचर्या, उस पर बहुत आधार है विचारों की दिनचर्या। क्योंकि तन का दिनचर्या तो बता दिया, और ये मन जब विचारों की दिनचर्या हो जाती है तो क्या होता है, वो ही निरंतरता जब प्रदान करती है तो शक्ति आती है। इसका भी एक इतिहास है, एक ज्वालामुखी ज्वाला देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में, शायद कईयों ने सुना होगा। तो वहां पर ना, वहां का एक है कि एक मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर, देवियां तो भारत में बहुत हैं, तो उस साइड में बहुत प्रसिद्ध ज्वाला देवी है, ज्वाला देवी का मंदिर है। उसकी विशेषता यह है कि उसके मुंह से लगातार ज्वाला निकलती रहती है, आग निकलती, इसलिए उसका नाम ज्वाला देवी पड़ गया। तो वो ज्वाला निकलती रहती है, जिससे भी पूछो, हम जिस पहले यहाँ समर्पित होने से पहले ONGC एक कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस, तो उसका काम ही है तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन। तो उसमें भी हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया था कि 60s में, अर्ली 60s में, तो जब सर्वे हो रहा था तो देखा वहां पर उसके नीचे बहुत गैस के भंडार हैं, देखा वहां पर तो पता चला ऐसे गैस के भंडार हैं, तो वहीं पर ये मंदिर था। तो ऐसा पता चला, जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने देखा कि भाई ये गैस निकल रही होगी और ऊपर किसी ने देवी का मंदिर बना दिया। लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो उनको वैसा बताने की जब कोशिश करी तो लोग नाराज हो गए कि अरे ये तो देवी है, हमारे दादा परदादा, उनके भी परदादा, 400-300 साल से ये तो मुंह से ज्वाला निकलती है, कभी बुझती नहीं, ये तो बहुत बहुत महान देवी है। तो हमारे यहाँ के उधर के कोई हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर आए, उन्होंने जो जो नीचे से निकल रही थी उस पाइप उसके अंदर वाल्व फिट करा, और वाल्व फिट करके उन्हीं के ही सरपंच को बुलाया और उसे बोला, देखो ये जो है हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये जो ज्वाला निकल रही है ये आस्था के साथ साथ ये अंदर से गैस निकल रही है, नीचे गैस के बहुत भंडार हैं, आप ही खुद ये जो वाल्व लगाया है इसे घुमाओ। उसने घुमाया, वो गैस बंद हो गई निकलनी, उसके मुंह से निकलनी ज्वाला, वो भी बुझ गई, वो भी बंद हो गई। फिर उसे बोला, अच्छा आप इसे उल्टा घुमाओ, और उल्टा घुमाया फिर जलाओ, जलाया फिर जलने लगी। तो ये बात है कि आस्था तो है, लेकिन हम उस सत्य को इस तरीके से कहे दुनिया के सामने कि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तो ये बाबा एक तो हम बच्चों को सिखाना चाहता है कि अक्सर करके एकाग्रता की शक्ति में क्यों कमी आती है, हमें कोई भी बात याद आ जाती है भूतकाल की, कोई भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये क्यों हुआ, और उधर बुद्धि चली जाती है और हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों करा, यदि ऐसा न होता तो ये नहीं होता, कई सारे विचार मन के अंदर विपरीत परिस्थितियों वाले आ जाते हैं। इसीलिए ये आवश्यकता है कि बाबा कहता है, इसीलिए जो सत्यता हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, सभ्यता भी हो, सत्यता के साथ साथ सभ्यता। हमारा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, लेकिन उसके नशे में हम दूसरे की भक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, और उससे क्या होगा, हमें उसका भी सकाश शक्ति मिलती, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर नाराज होता है तो उसकी दुआ की वजह बद्दुआ जैसे मिलती है, वो हमारा ध्यान एकाग्रता में भंग कर देती है, उसका बल हमें नहीं मिल पाता, उसकी बद्दुआ जैसे कहे वो मिलती है, इन्हें तो अपना अहंकार है, ठेस है, तो इसीलिए उससे उसको ठेस पहुंचती है और बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए सत्यता के साथ साथ सभ्यता ये होना बहुत आवश्यक है। और इसके अंदर क्या चाहिए, देखो ब्रह्मा बाबा में ना क्या देखा हमने, कि ये सब गुणों का, सारे गुण और शक्तियों का मिश्रण था, पूरे संगम युग में शक्तियां और वही गुण बन जाता है, इसलिए सतयुग में के लिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, वहां गुणों की बात होती है और यहां पर हमें शक्तियों की आवश्यकता। जब किसी चीज को फेस करना होता है, परिस्थिति को, व्यक्ति को, तो शक्ति की आवश्यकता होती है। शरीर की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, वाणी की शक्ति हो, समय का, ये सब बाबा ने जो खजाने दिए हैं ना, ये शक्तियां ही, ये ही हमारे खजाने हैं। तो इनमें एक तो तन मन की दिनचर्या रोज बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बहुत बहुत इकट्ठी होती जाएगी। और साथ साथ और क्या करें इसके साथ शक्तियों का, क्योंकि हम जमा तो रोज करते हैं, लेकिन जमा के साथ क्या होता है, लीकेज भी हो जाता है। अमृत वेले जमा किया, बहुत योग किया सब, लेकिन कोई परिस्थिति आई, थोड़ा सा क्रोध की परिस्थिति आई, थोड़ा लोभ का परिस्थिति आई, अहंकार आया, कोई भी आया, बस लीकेज हुआ, जो जमा किया वो निकल गया। इसीलिए आवश्यकता ये, हम जमा भी करें और लीकेज अगर कुछ हो उसे बंद भी करें, वो लीकेज ना होने दें। इसीलिए इसके साथ साथ इन तीन बातों का ध्यान रखें एक तो, और साथ साथ क्या करें, क्योंकि अंत में बाबा ने कहा था और दो शक्तियां, एक आवश्यकता है, हम सब व्यक्ति जब से पैदा होते हैं दो शक्तियां सब में होती हैं। जिस दिन से पैदा हुए कौन सी शक्तियां, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हम सब में पहले दिन से हैं, लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। किसी ने कुछ कहा, उस बात को खत्म, भूल जाए, अपमान किया, कोई बात हुई, वो तो न चाहते हुए भी बहुत दिनों तक मन में खटकती रहेगी, भूल नहीं सकेंगे, याद रहेगी। और याद रहने वाली बात जो बाबा रोज बोलते हैं, मुझे याद करो, वर्षा याद करो, मुरली, वो भूल जाती है। क्यों? क्योंकि भूलने वाली चीज बहुत समय तक याद रहती है, उसने बहुत स्थान घेरा हुआ है हमारी मेमोरी का। कंप्यूटर में भी कोई चिप्स होते हैं अलग अलग, बहुत मेमोरी ओवरफ्लो कर जाती है तो फिर क्या, उसको बढ़ाते हैं, दूसरा कार्ड डालते हैं। तो इस रीति से ये दो शक्तियों को एक तो हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। भूलने की क्या चीज है, उसे भूलने में, याद रखने की क्या शक्ति है और याद रखने। और दूसरी बात, अंत समय में, अभी ये हमारा अंतिम जन्म चल रहा है, ये तो आप सबको मालूम ही है, संगम युग बाबा ने बोला है, तो इसमें हमें इतने जन्मों का, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, तो हमारा एक पेपर जो सबके सामने आएगा वो है शरीर का पेपर, अंत का पेपर। देखो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल है, एक ही आत्मा है जो कि संपूर्ण बनकर के गई है, कर्मातीत बन के। तो हमारे सामने वही बाबा ने कहा ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के कदम पे कदम। तो ब्रह्मा के कदम पर कदम माने ब्रह्मा ने कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, उस बात को हम स्मृति में रखेंगे तो बस सब स्वतः ही हमारा सब चीज ठीक होती जाएगी। हमें ये सौभाग्य मिला, बाबा के साथ तो बहुत साल रहने का मिला, 62 से लेकर 69 तक, दसियों बार बाबा से मिले, पहले तो साल में 3-4 बार भी आ जाओ, कोई नहीं, छोटा परिवार था सब, बाबा भी जाते थे, 2 बार बाबा से दिल्ली में भी मिले, 1 बार कानपुर में मिले, इस तरीके से मधुबन के अलावा भी बहुत बार। और बाबा से मिलना माने वो शक्तियों को बाबा से जैसे खींचना, तो बाबा में एकाग्रता की शक्ति इतनी थी, ये देख रहे हैं ना हिस्ट्री हॉल, तो हिस्ट्री हॉल में बस 3 संधियां पड़ी है ऐसे, एक पे बाबा के बैठते थे, एक पे मामा, बीच में जो पार्टी में भाई बहन आते थे वो बैठ के अनुभव सुनाया करते थे, या गुरुवार को संदेशी आती थी बैठ के, वो भोग लगाया करती थी। तो वो मैं बात बताता हूँ, क्योंकि हम जो जीत अल्टीमेटली बाबा ने कहा है आप बच्चों को पूरा का पूरा जो विजेता बनना है, विश्व विजयी बनना है, उसके लिए क्या करना है, ये संसार एक खेल है पुरुष और प्रकृति का, दोनों पर आपको विजय प्राप्त करनी है। प्रकृति माने ये पांच तत्व, पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, और पुरुष यानी कि आत्मा, आत्मा और शरीर का ये खेल है। तो इसीलिए संसार रंगमंच पर हम सब खेल खेल रहे हैं। तो दोनों, तो मन को तो जीतने का हम रोज पुरुष को पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर ही रहे हैं, तो वो तो उसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो प्रकृति की ये पांच तत्व हैं, इन पर कैसे विजय प्राप्त करें, तो ये हमारा सारा खेल ही उस एक सेकंड का है, अंतमते सो गति का। जिस समय हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा जाएगी, उस समय हमारी कैसी स्थिति है, उस पर ही आगे आने वाले जन्मों का सारा आधार है। जैसे लौकिक जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट, लास्ट पे ड्रॉन जो होती है, लास्ट डे जो व्यक्ति तनख्वाह लेता है, उसके आधार पर ही सारी उसकी प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी या पेंशन वो सब कैलकुलेट होती है, उसके आधार पर ही, और वो जीवन पर्यंत मिलती रहती है। ऐसी लास्ट ब्रीथ ड्रॉन जो होती है, लास्ट श्वास जो हमने लिया है, उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी थी, बाबा की स्थिति देख लो। हमें याद है कि हम यहाँ पर, हम आसाम में पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करने के बाद, वहाँ हमारे जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे, बाबा ने तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ कराया है, वहाँ जाओ। और बहुत मेरे भोले भाले बच्चे, तब पूरे आसाम क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में एक भी सेंटर नहीं था। ये बात है 1967 की, जब 67 में हम इंजीनियरिंग पास करके ONGC में फर्स्ट पोस्टिंग वहां हुई। तो हमारी दिल नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा कि भेजा बाबा ने, और वहां वास्तव में बाबा के बहुत भोले वाले भगवान के महावाक्य हैं, गलत तो हो नहीं सकते। बस निमित्त संदेश देने की देर थी, और वो धीरे धीरे सब ज्ञान में आ गए। ज्यादातर उसमें बहुत मारवाड़ी माताएं बहुत थी आसाम, और वो सब ज्ञान में आ गए। और बाबा तो कहता है ना, अगर मैं देखता हूँ बच्चा उतना समझाने में होशियार नहीं है, और समझने वाले बहुत अच्छे आए हैं, तो बाबा क्या करता है, बाबा प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देता है। और हमने बहुत बार ऐसे अनुभव किया, हमें भी बहुत सेवा का अनुभव नहीं था उस समय, लेकिन बाबा जैसे खुद ज्ञान सुना रहा है, और उसका प्रमाण क्या होता था कि बाबा का जो भी महावाक्य निकलते थे ना, उनको सुनकर बहुत आत्माएं ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार होता था। जैसे यज्ञ में शुरू में, हम बच्चों में तो वो ताकत है नहीं, लेकिन बाबा के ज्ञान से बस, और उससे उनका निश्चय बहुत बहुत बढ़ता गया। तो ये वहां पर, वहां से हम 1969 जनवरी में बाबा ने अपने पास बुला लिया, हम छुट्टी लेके आ गए इधर। हम देहरादून से गए हुए थे, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कर्माती एकाग्रता का देखो क्या बात होती है, बाबा को ना अंत समय क्या स्थिति थी, अगर आप वो पढ़ो जो बाबा के महावाक्य जनवरी की मुरली 1969 की, उसमें बाबा ने बिल्कुल कहा है अंत में बच्चे, बहुत जैसे कि अंदर युद्ध चल रही थी। इससे पहले मैं बता दूं कि 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, सिर्फ योग कराया। उसके बाद बाबा याद प्यार देके चले गए। फिर बाबा ने वहां पर निकल के यीशु दादी को बोला, बच्ची आप जितना भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, और बस कोई भी बच्चा बिना पत्र के जवाब के न रह जाए। बाबा को मालूम था कि आज ये मेरा अंतिम दिन है, हम भी जब कर्मातीत अवस्था के जितना निकट होंगे हमें भी पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा कि हाँ अब मेरा इस शरीर से हिसाब किताब पूरा हुआ, अब बाबा हम आपके पास आए कि आए। बहुत खुशी से जैसे कि ना शरीर छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि कर्मातीत अवस्था के समय तो किसी का बंधन कोई खींचेगा नहीं। तो एक तो ये देखा बाबा ने, दूसरा बाबा का क्या देखा, नक्की लेक का जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग वो लेने की बात चल रही थी, बहुत जर्जरीभूत अवस्था में थी, तो बाबा ने फाइल में उस दिन सैंक्शन करा उसको ले लो और उसमें बाबा का सेवा स्थान बनाओ। तो देखो आज नक्की लेक का म्यूजियम है, पूरे विश्व की उसने जितनी सेवा की है, जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, बड़े बड़े लोग देश विदेशों के वहां से संदेश लेकर के गए हुए हैं। फिर और हुआ कि जब शाम को ना रोज क्लास होती है 8:45 बजे, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सब लोग खाना वाना खा के 7 बजे तक आ जाए। ये खास बोला बाबा ने, भोजन करके क्लास में, क्योंकि बाबा को मालूम था कि बस बाबा अंतिम मुरली चलाएगा और फिर बाबा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहेगा ब्रह्मा बाबा का, और फिर तो बाद में तो भोजन वगैरह बच्चे खा नहीं सकेंगे। तो इसलिए सब बच्चे भोजन आदि करके वहां पर पहुंच गए। और ब्यूटी तो तब है, हम ब्राह्मण आत्माएं भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अगर दुनिया की तरह शरीर छोड़ा, कोई बीमारी से, कोई अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी, उसमें नीचे हम भी दब गए मर गए, कोई फ्लड आया, सुनामी आई, उसमें मरे, तो हम ब्राह्मणों में और दुनिया वालों में अंतर ही क्या रहा? अंत मते सो गति का जो गायन है वो तभी होगा जब अंत में हमारी मति हमारे अनुकूल हो, परिस्थितियां हमारी अनुकूल हो। परिस्थिति विपरीत होंगी, प्रतिकूल होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन बाबा ने यह भी कहा है बस थोड़ी दूर तक जैसे उसका अर्थक्वेक हो गई उसका असर होगा और तुम्हारे तक आते आते उसूली से कांटा हो जाएगा। बहुत परिस्थितियां देखी हमने ऐसे अनेक लाटूर में जब हुआ था, इधर जब वहां पर हुआ था कच्छ भुज में अर्थक्वेक आया था, बहुत लेटर आते थे किस प्रकार बाबा के बच्चों की रक्षा हुई। परिस्थितियां बाहर इतनी प्रतिकूल उल्टी होते थे लेकिन बाबा के बच्चे से, बाबा ने कहा है मैं बच्चों की सेफ्टी के लिए बंधा हुआ, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बस कंडीशन यही है बच्चों की बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी रहे। बाबा वो ही टच कराएगा जहां सेफ्टी होगी, बच्चों के पांव वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो इसीलिए बस कंडीशन यह कि जो है ना क्लैरिटी, बाबा ने कहा है सच्चाई और सफाई, वो तार बाबा के साथ बच्चों की बंधी रहे। तो इस तरह उस दिन बाबा ने ये सब कराया, बाबा 7 बजे मुरली सुनाने पहुंच गए। बाबा को कई बार नॉर्मल केस में खांसी आती थी और गला साफ करना पड़ता था, कफ आता था, लेकिन उस दिन की मुरली सुनो जो आज भी वहां मिलती है कैसेट फॉर्म में तो है सीडी में, 18 जनवरी की मुरली वहां पर 69 अंतिम मुरली ओम शांति भवन में, जो ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो वीडियो कैसेट है काउंटर वहां मिलती है, अभी भी है, ले सकते हो आप। तो उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी अंतिम कर्मातीत स्थिति होगी और वो होगी एकाग्रता के आधार पर, वो भी मैं बताता हूं, तो उस आधार पर तो क्या होगा, हमारे भी शरीर के कर्म भोगों के ऊपर ना हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। और बस जब पूरा तो उस समय शरीर की कोई भी व्याधि हमें परेशान नहीं कर सके। हाँ उससे पहले अंत समय युद्ध होगा। बाबा ने कहा जब बाबा चले गए और बाबा से बच्चों ने पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो वो बाबा को 13 दिन तक भोग लगाया गया था ना, हम यहीं पर थे अभी भी, 18 जनवरी जो जनवरी की पहली मतलब अव्यक्त वाणियों की जो किताबें हैं उनमें जो पहली पुस्तक छपी हुई है उसमें 21 जनवरी से लेकर के आगे तक का पूरा, उसमें 13 दिन का भोग का भी वर्णन है। तो बाबा ने बताया बच्चे अंत समय में कर्म भोग और योग बल दोनों की बहुत युद्ध चल रही थी। कर्म भोग जो है ना वो बहुत विजय भारी हो जाता था, विजय प्राप्त करता था तो बहुत शरीर में दर्द होता था, और कभी योग बल जब ऊंचा हो जाता था उसके ऊपर विजय तो थोड़ा वो कम हो जाता था। बहुत अंत समय कुछ मिनटों तक कशमकश चलती रही और अंत में फिर योग बल ने भोग कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और आत्मा बस मक्खन से बाल की तरह जैसे अलग हो गए। तो अंत तक हमारी ये युद्ध चलेगी और अंत समय तो बचा खुचा जितना भी हिसाब किताब होगा वो इस शरीर से चुप्त होगा, संबंधों का होगा, तन का, मन का, बीमारी का, सबका। इस कारण से लेकिन उस समय कर्म भोग वो विजय न प्राप्त कर ले योग बल के ऊपर, ये हमें देखना है। क्यों? क्योंकि इसका और इससे विपरीत जैसे ममा का था, हमें याद है जब ममा ने शरीर छोड़ा था तो सब यज्ञ थोड़ा हलचल में था उस समय भी, तो ममा का शरीर रखा हुआ था यहाँ पर। तो बाबा ने ऊपर पूछा, ममा आप आई हो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो ममा तो जैसे शांत रहती थी, शांत रह इशारा था कि जैसे नहीं। तो मामा को बाबा ने कहा, जाओ बच्ची नीचे जाओ, अभी तुम्हारा शरीर वहां रखा है और तुम कर्मातीत स्थिति क्या होती है उसका अनुभव करके आओ। तो मामा आई नीचे, मामा ने थोड़ा समय मतलब जैसा भी बताया, उसके बाद जब ऊपर गए तो मामा ने यह अनुभव सुनाया कि बाबा ने पूछा, बच्चे कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? कि नहीं बाबा, मैं जब गई तो शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था और उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई और इस वजह से कोई भी अनुभव नहीं हुआ और मैं चली आई। सही भी बात थी, जब तक शरीर में हलचल है, आत्मा है, तब तक ही अनुभव कर सकती है। एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कैसे अनुभव करेगी। तो बाबा ने कहा था कि बच्ची देखो, कर्मातीत होके ही सब आत्माओं को आना है और परम धाम जाना है, और जो भी हिसाब किताब रहे हुए हैं वो चुक्तु करने हैं, इसलिए अभी जाओगे तो नया जन्म लेना पड़ेगा और नए जन्म से अपने सारे बचे हुए और हिसाब किताब वो सब चुक्तु करेंगे, और फिर जब परम धाम तो सबको इकट्ठा जाना है जैसे बाबा ने कहा है। अभी बाबा भी सूक्ष्म वतन में हम बच्चों की राह देख रहा है, वो भी ठहरा हुआ है। तो इसलिए हमें कभी भी शरीर से कितने भी परेशान हो जाएं, बीमारी हो, तकलीफ हो, बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी ये संकल्प ना आए कि मैं ये शरीर छोड़ूं और दूसरा शरीर लूं। ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है संगम युग का, इससे ही हमें सारे हिसाब किताब चुक्तु करने हैं। जब अगर छोटा बच्चा बन गए जाकर के तो पहले 8-10 साल तो वेस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो इस कारण से कभी भी, और हमने देखा बाबा को, मम्मा को, दादियों को देख रहे हैं कितना हम दादी जानकी की तरह प्रकृति जीत बने। दादी जानकी का हमें याद है 1999 31 दिसंबर की बात है, बाबा आए हुए थे नीचे शांतिवन में और दादी जानकी की तबीयत बहुत बहुत खराब थी, लोटस में थी दादी जानकी। वहाँ डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था बिल्कुल, जयंती बहन भी लंदन से आ गए थे, बहुत तबीयत बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर भी संदेश आया बाबा के अपना दादियों के पास, बाबा कि भाई दादी जानकी जी की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। 31 दिसंबर 1999 नई शताब्दी 2000वां साल शुरू हो रहा था। तो बाबा ने तो सुना, कहा नहीं बच्ची कोई बात नहीं, वो बच्ची प्रकृति जीत है और बस प्रकृति जीत है, ठीक हो जाएगी। एक शब्द में बाबा ने बोला, उधर तबीयत ठीक और अभी देखो आज 18 साल हो गए और कितना दादी आज भी दिल्ली में है, कल न्यू ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में वहां गई थी, इससे पहले दादी मुजफ्फरपुर थी इसी महीने, इससे पहले रशिया में थी, लंदन में थी, कितना इस प्रकृति पांच तत्वों के बने शरीर के द्वारा सेवा कर रही है। तो इसीलिए हमें भी प्रकृति जीत करना है। बीमारी होगी, शरीर में तकलीफ होगी, लेकिन ये हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का कारण न बन जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इस हमें प्रकृति जीत बनना होगा। तो बाबा ने भी उस दिन मुरली चलाई और मुरली चला के बाबा आए और बस कमरे में गए। उससे पहले दरवाजे पर बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बस बाबा कमरे में गया। बहुत प्यार से बाबा ने सबको दृष्टि दी, तो ये बस, और कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी दी। तो भाव क्या है, ये है वही भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु। हम जाना तो सबको है, जिसके भी ये शरीर है सबको जाना है, छोड़ना है, लेकिन हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ब्यूटी तब है। अगर प्रकृति के वश होकर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, ये आया वो, तो इसीलिए इसके लिए क्या करना है, प्रकृति के तत्वों के साथ हमें मित्रता करनी पड़ेगी। देखो बाबा भी प्रकृति जीत होके मरा, मतलब शरीर छोड़ा बाबा ने, तो उस समय बाबा का शरीर 3 दिन तक रखा रहा। 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई दवाई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा एकदम, कोई दुर्गंध नहीं आई शरीर से एक भी। और सबसे बड़ी बात, तो काफी हद तक शरीर में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी। हम लोगों ने स्नान कराया, सारे जो वरिष्ठ भाई थे, जगदीश भाई, निर्वैर भाई वगैरह, रमेश भाई, जो भी सब, हम सब भी उनकी मदद में थे, और वहां पर ले गए, नए वस्त्र पहनाए गए सब, लेकिन शरीर में काफी हद तक जैसे, ये है प्रकृति का पूरा सहयोग, पांच तत्वों का सहयोग। तो हम भी कैसे प्रकृति को मित्र बना लें कि प्रकृति हमारे मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए बस एक एक पॉइंट ही बताएंगे, अंत में समय हो गया है, कि ये पांच तत्व जो है ना, इनको हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। मित्र मित्र की कभी जान नहीं लेता, मित्र मित्र की हमेशा रक्षा करता है। तो उससे पहले एक बात बता दें, बाबा में कितनी एकाग्रता की शक्ति थी। गुरुवार का दिन होता था, संदेशी आती थी, भोग वहां पर रखा रहता था, बस बाबा संदेशी को कहता था, बाबा की मुरली के बाद संदेशी भोग लगाने के लिए बैठती थी, बच्ची गोसुन तमसुन, ऐसे बाबा जरा सा दृष्टि देता था, वहां बच्ची गोसुन जाओ जाओ, बस 2 बार बोला संदेशी एकदम उड़ जाती थी। ये है अपनी एकाग्रता की शक्ति के द्वारा दूसरे को जैसे मैसेज कन्वे करना, जो बाबा ने आज की मुरली में बोला, बच्ची उड़ो जाओ, और बस जाती थी और बस थोड़े समय में ही आ जाती थी। फिर संदेश सुनाते थे, फिर क्या होता था, जब संदेश सुना दिया, एक दो अब इस दुनिया की बात सुनाते हैं कि बस भोग बाबा खोलते थे, डिब्बियों में जैसे भोग होता है, मानो कुछ शीरा है, बूंदी है, हलवा, थोड़ा थोड़ा बाबा हथेली में रहता था, लेता था और उसके बोल, आओ बच्ची आओ, आओ बच्ची, किस बच्ची को बुलाता था, छोटी बुलबुल होती थी एक चिड़िया, हर गुरुवार को आती थी, बाबा के हाथ में आके भोग खाती थी। बस बाबा ने बोला, वो चू 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 करती हुई पता नहीं कहाँ से आ जाती थी, पहले टेबल पर बैठी, फिर बाबा के हाथ पर बैठ जाती थी, बिल्कुल निडर होके फिर वो खाती थी जो भी हाथ में रखा होता था। उसके बाद खाके, बच्ची हो गया ठीक है जाओ, और उसके बाद बस वो उड़ के चली जाती थी। तो ये जो हमारा जो है भक्ति मार्ग में भी गायन है कि पुरुष और प्रकृति के इस खेल में सभी, केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु, ये जो पांच तत्व हैं जल अग्नि वायु पृथ्वी, ये सब हमारे वशीभूत। और इसीलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में जो ऋषि मुनि द्वापर युग में होते थे, हिंसक प्राणी भी आके शेर वगैरह उनके सामने आके बैठ जाया करते थे, बिल्कुल जैसे अहिंसक हो जाया करते। ठीक है, ये तो एक अहिंसक प्राणी की बात हुई, चिड़िया हर एक को यह बड़े प्रेम से बुलाया। तो लेकिन एक बार का दृश्य है, यहाँ पर ये जहाँ हमारी डिस्पेंसरी है ना, उधर उसके पास एक सांप निकला, तो सब लोग दौड़े, जो भी भाई लोग, मारो उसे, बड़ा तेजी से, थोड़ा विषैला सांप था, तो उसको उसके फन पर थोड़ा एक भाई ने बांस वगैरह रख के जैसे उखड़ा हो गया। बाबा उधर से आ रहे थे किचन साइड से, तो बाबा आप इधर नहीं आओ। बाबा ने कहा क्यों भीड़ लगा रखी है बच्चे, तो बताया ऐसे सांप। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे को मारो नहीं, बच्चे को बाबा ये तो बड़ा गया जहरीला सांप है, कि नहीं इसे पकड़ो, मटके में डाल के बंद करके छोड़ाओ जंगल में। तो एक भाई होते थे बलदेव भाई करके, राजस्थान में जयपुर में, बहुत पुराने। तो उसको बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ इसको पकड़ो और मटके में डाल के ले जाओ। वो थोड़ा हिचकने लगा क्योंकि सांप का पकड़ने का तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बाबा जी से बोले उसमें जैसे वो बल शक्ति आ जाती है, बहुत हिम्मत करके उसने पूंछ से पकड़ा, सांप भी जैसे बिल्कुल शांत हो गया, पहले बहुत फपक रहा था इधर उधर, वो शांत हो गया, मटके में डाला, उसको कपड़े से बांधा और फिर छुड़वा दिया। तो द्वापर युग से जो गायन है हम बच्चों का ही, तो वो यहाँ पर अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो इस रीति से, जो प्रत्यक्ष हमने तो एक ही ये बार देखा, लेकिन जो यज्ञ के पुराने भाई बहन है वो तो कई घटनाएं सुनाते हैं किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति पूरे के पूरे जैसे सहयोगी हो जाया करते थे। तो इस रीति से ये बाबा का जो देखा, और बाबा का देखने के बाद फिर अंत में ये जो पांच तत्वों का शरीर है, इनका किस प्रकार से बाबा ने देखा, हमने देखा कि ये पांच तत्वों को हम कैसे अपना मित्र बना लें। एक बात, ये तो लंबा वो है, मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि समय तो हो गया है, लेकिन हम बच्चे जो रहते हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जो पांच तत्व हैं, इनको अगर हम मित्र बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल हमारी मृत्यु का कारण न बने, सुनामी न बने, फ्लड न बने, बाढ़ आती है, तो क्या करना पड़ेगा, जल के गुणों को धारण करके हमें उसे अपना मित्र बनाना पड़ेगा। तो जल के गुणों को, जल में बहुत गुण है, लेकिन मैं सिर्फ एक गुण का वर्णन करता हूँ। जल में कौन सा सबसे बड़ा गुण है, एडजस्टमेंट का, बड़े शीतलता के भी है सब है, लेकिन एडजस्ट, गिलास में लो गिलास में सेट हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, थाली में लो थाली है, हर चीज में। ऐसे ही हमारे अंदर भी एडजस्टमेंट का गुण आ जाए, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सके, ऐसा ना हो सास बहू का, बाप बेटे का, भाई का, भाई हम उससे एडजस्ट होके नहीं चल सकते, बाकी सबसे चल सकते। अगर एडजस्ट होने का गुण हमारे अंदर आ गया, इसका मतलब जल का गुण हमने धारण कर लिया, तो जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जल को हमने मित्र बना लिया। ऐसी धरती का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, पृथ्वी का सहनशीलता, वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है दातापन का। धरती देती है, एक बीज आप बो दो पेड़ उगाएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। तो ऐसी हम भी दाता बन के सबको देते रहे, कैसे, कोई स्थूल चीज नहीं देनी, उसकी तो लिमिटेशन है, लेकिन प्रेम है, शांति है, सहयोग है, इसके भावनाएं हैं, शुभ भावना, शुभकामना, कोई भी हमारे सम्मुख आए, बस बिना हमारे प्रेम शीतलता शुभ भावना कामना इनके लिए बिना न जाए, हमारे से ऐसी वो वाइब्रेट होती रहे, तो अगर हमने ये दातापन का गुण धारण कर लिया, इसका मतलब हमने धरती का गुण धारण कर लिया दातापन का, तो धरती में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धरती हमारी मृत्यु का, अशांति दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि धरती को अपना मित्र बना लिया। ऐसे वायु में कौन सा गुण होता है? हल्केपन का। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। देखो विपरीत गुण है दोनों में, वायु ऊपर उठाएगी पृथ्वी नीचे, फिर भी सहअस्तित्व, कॉपरेशन, सदा साथ रहते हैं, विपरीत गुण है लेकिन साथ साथ सहयोग की भावना से। ऐसे ही सब हम सब में जिस परिवार में रहते हैं उनमें सबके गुण शक्तियां अलग अलग होंगे, संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन वो टकराए नहीं, हम उनके साथ साथ रह करके वो चलते रहे, तभी हम पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को अपना मित्र बना सकते हैं। ऐसे आकाश तत्व का कौन सा गुण है? आकाश विशाल होता है, उसके अंदर सब चीज समा जाती है। यहाँ जितने इतनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का धुआं जा रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं, सब आकाश में ऊपर समाता जा रहा है। ऐसी हम भी, जो भी व्यक्ति है उसके कमी कमजोरी को उसको समा ले, यानी उसको क्षमा करने की शक्ति हो। होता क्या है, वो व्यक्ति सामने आएगा बार बार, हमारे मन में उसके वो बातें याद आ जाएंगी जो उसने हमारे साथ ठीक नहीं की है, और फिर हमारे मन के अंदर भी कोई बदले की भावना, अपमान की भावना कोई आ जाएगी। नहीं, आकाश की तरह इतना विशाल हृदय हो जो हमने बाबा मामा और दादियों में विशेष करके और देखा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बाबा के सम्मुख आई, लेकिन बाबा ने ना कभी भी किसी से भी ना बदला लेने की भावना नहीं। और समाजियों ने हमारा कलकत्ता में मेला हुआ, पूरा टेंट जला दिया, सब पिक्चर जल गए। हमारे जो भाई थे बहुत सीनियर वकील, उन्होंने बोला बाबा हमें केस करना चाहिए, हमारे पास प्रमाण है, हम जरूर जीतेंगे। वही बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने क्या करा है, बाप कभी भी बच्चे पर केस नहीं कर सकता, उनको क्षमा कर दो, आगे के लिए सावधानी रखो कि उसका हम इंश्योरेंस कराए, प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। तो भाव क्या है, कभी भी बदले की भावना नहीं, विशालता का गुण, यही महान आत्माओं का गुण है। और अंतिम है अग्नि, सूर्य तत्व, उसमें क्या गुण है? अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है चीज का। ऐसे हमारे सम्मुख कोई भी आए, अंत में यही पार्ट चलना है जो बाबा मामा के सम्मुख हम लोगों ने देखा। लोग आएंगे, सुनने का, सुनाने का, अपनी प्रॉब्लम सुनाने का समय नहीं होगा, लेकिन आएंगे, बस बोला कुछ नहीं है, नैनों से उनके हम वो भाव को पढ़ लेंगे, और जैसे ही वो भाव को पढ़ लेंगे हम उनकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तभी भक्ति मार्ग में गायन है, भक्त और भगवान के बीच कोई संवाद नहीं, बस भगवान ने इच्छा पूछी, भक्त ने कही, भगवान के मुंह से क्या निकला? तथास्तु, और कोई संवाद नहीं, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो गई। ये हमने अंतिम दो दिन में अनुभव किया। 18 जनवरी को हम बाबा से 5-6 बार मिले, हमेशा जब भी मिलते थे कि बाबा को बताते थे, बाबा ये सेवा हो रही है, इतनी आत्माएं आ रही हैं, वगैरह वगैरह अपने पुरुषार्थ की बात। लेकिन उस दिन हमने देखा बाबा के सम्मुख गए, बस बाबा ने दृष्टि दी, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसा हो जाएगा। एक शब्द के बोले बिना बाबा ने 5-6 बार, 6 बार बाबा से मिले दो दिन में, 17 और 18 को बाबा ने हर बार, बच्चे ऐसा ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसा हो जाए, बस। तो ये है अपना इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। दूसरे की इच्छा को हम तभी जान सकते हैं जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या बने हुए होंगे। तो अंत में इतना संकल्पों के ऊपर विजय हो, यही एकाग्रता है। अपने संकल्पों पर संपूर्ण विजय जिसकी होगी, वो दूसरे के संकल्प को तुरंत पढ़ लेगा और उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकेगा। तो ये है एकाग्रता का बाबा का स्वरूप भी जो देखा अंत में। हम सब भी इस स्वरूप के अपने मन के संकल्पों को जीत करके इच्छा मात्रम अविद्या बनते जाएंगे तो क्या होगा, सर्वशक्तियों की धारणा होती जाएगी जो अंत समय हमें बहुत काम देगी। तो ब्रह्मा बाबा का ये जो स्वरूप देखा, अंत में हम सबको भी इसी स्थिति से पार होना है और इसलिए अभी से ही हमारा बस यही पुरुषार्थ रहे कि संकल्पों के ऊपर विजय का, इच्छा मात्रम अविद्या का, उससे क्या है दूसरों की इच्छाओं को जान करके पूर्ण कर सके। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। हमारे मोहन सेंगल भाई का बहुत बहुत थैंक यू। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स और डायरेक्शन ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी तरह साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में भाई साहब ने क्लियर किया और हम तत्वों को सबको सहयोगी बनना है, तत्वों को भी सहयोग देना है तो तत्व भी हमें सहयोग देते। तो कितना गहरा ज्ञान, बाबा का मुरली वही है लेकिन कैसे हम उसको रिसीव करके उसकी डेप्थ में जाके कितना अच्छी तरह से ब्रॉड बन जाता है माइंड, देने वाला बन जाता है। तो भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स है, सभी एक बार जोर से ताली भी बजाएंगे। बहुत खुश हुए भाई बहन आपका क्लास सुन के और ऐसा ही तत्वों को भी सहयोग देंगे, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाएंगे, क्वांटिटी कम करेंगे, यही है रियल मेडिटेशन। थैंक यू, ओम शांति।